तफसीर सूरत तकासुर मक्की सूरत है और बाज रवायात में से मदनी भी कहा गया है। इसकी 8 आयात, 1 रुकू, अल्फाज और कलिमात की तादाद 28 है जबकि हुरूफ 123 हैं। पहली ही आयत के लफ्ज अत्तकासुर को इसका नाम करार दिया गया। तकासुर का लफ्ज तफाउल से निकला है, बाबे तफाउल, और तकासुर कसरत से है। ये लफ्ज तकासुर कसरत से तफाउल का मसदर है, बाबे तफाउल से तकासुर जो है ये मसदर में है। और ये लफ्ज जैसे बाबे तफाउल, ये बाब जो है, जब इस बाब में कोई मादा आता है या मसदर आता है तो बाहम मुकाबले के मानी पाए जाते हैं। मसलन तकातल, दोनों ने आपस में मिलकर किताल किया। तकाबल, ये भी बाबे तफाउल से है, दोनों ने आपस में एक दूसरे के वो आमने सामने आए मुकाबला करने के लिए, तो दोनों तरफ से मुकाबला करने के मानी में ये बाब इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे तकासुर, तो इसमें भी क्या है कि दो ग्रोह हैं जो एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। इससे पहले कि हम सूरत की तफसीर में जाएं, जरूरी है कि हम ये देखें कि सूरत जो है सूरत का मौजू और मजमून क्या है। इस सूरत में लोगों को दुनिया परस्ती के बुरे अंजाम से खबरदार किया गया है कि दुनिया से मोहब्बत, दुनिया से इश्क और दुनिया के हासिल करने पर फख्र करना, और इसकी फिर हकीकत क्या है, कब्र, मौत, कब्र और फिर आखिरत की जिंदगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अल्हाकुमुत्तकासुर, तुमको गफलत में डाल रखा है। अल्हाकुम का लफ्ज अल्हा लहव से है, लाम हा वो, इसके असल मानी गफलत के हैं। अरबी जबान में लहव लफ्ज हर उस शगल के लिए बोला जाता है जिससे आदमी की दिलचस्पी इतनी बढ़ जाए कि वो उसमें मुनहमिक होकर दूसरी अहम तर चीजों से गाफिल हो जाए। और मानी क्या है कि अल्हाकुम, कि तुम्हें मसरूफ कर दिया है। और कुम से मुराद क्या है कि इसमें हर जमाने का इंसान, और मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, मर्द है या औरत, हर तरह का इंसान इसमें शामिल है कि ए इंसान, तुझे गफलत में डाल दिया है। वो दुनिया जिससे तुम मोहब्बत करते हो और तुम इसमें इतने मसरूफ हो कि तुम आखरत को भूल गए। तुम जो है दौलत के जमा करने में इतना मसरूफ हो, उसकी ऐसी धुन तुम पर सवार है कि तुम्हें आखिरत की फिक्र जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। तुम जो है वो अपने आप से और दुनिया की जो चीजें हैं उनसे इतनी मोहब्बत करते हो कि अल्लाह को भूल गए। तो जो कुछ भी कर रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, सारी चीजों का एक ही महवर है और वो क्या है कि दुनिया। तो अगर दुनिया में आखिरत की तैयारी न की जाए तो दुनिया लहव है, फिर कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कि अल्हाकुम, के तुम्हें जो है गफलत में मुब्तिला कर दिया है सबके सबको। किसने? तकासुर ने। तकासुर जो बाबे तफाउल से है, और इसके मानी क्या है कि आपस में मुकाबला। इसके लिए मुफस्सरीन जो हैं इसके 3 मानी बताते हैं। कहते हैं कि तकासुर का लफ्ज कसरत से निकला है, इसके 1 मानी है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा कसरत हासिल करने की कोशिश करे। मसलन क्या कसरत? कैसी कसरत? बाज लोग, आप देखें, मैं छोटी सी चीज से शुरू करती हूँ। बाज लोगों को जूते जमा करने का बड़ा शौक होता है, और बाज लोग जैकेट्स, स्वेटर, बाज को स्कार्फ, बाज को कपड़े, बाज को बर्तन, बाज ये टिकटें बहुत जमा करते हैं, बाज को जो है वो ये परिंदों के पर जमा करने का शौक होता है, बाज को जैसे गार्डनिंग करने का शौक है, बाज को दोस्तियां बनाने का, सोशलाइजेशन। बाज लोग सोना, सोना तो औरत की वैसे कमजोरी है, शायद कोई औरत होगी जो इससे मोहब्बत ना करती हो, बस जहां सोने का जिक्र आया, एक तो वो स्लीपिंग है ना, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही, उसमें भी कमी नहीं करती औरतें, हम लोग, और सिर्फ हम ही नहीं, सभी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ गोल्ड की। तो गोल्ड जो है वो औरत की कमजोरी है, तो उसके लिए फिर हम बहुत उदास भी होते हैं और शिकवा भी करते हैं, नशुकरी भी करते हैं, रोते धोते भी हैं, कभी वालदैन का के कुछ ना दिया, कभी ससुराल का, कभी शोहर का, कभी फिर अपने बच्चों का, कि बीवी को तो ला देता है, माँ नहीं इसको नजर आती, माँ का नहीं कभी ख्याल आता। तो बहरहाल बाद लोगों को सोना, जेवर, चांदी, ये चीजें जमा करने का जो है वो बहुत शौक होता है। इसी तरह बाज लोगों को जो है घर बनाने का, घर को सजाने का, ज्यादा से ज्यादा बर्तन लेने का। और मेरी एक स्टूडेंट है, ये कहती हैं कि इनको जो है ये जो चाय नहीं जिसमें बनाते कैटल, खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इसका बड़ा शौक है। फूलों का बड़ा शौक है, अच्छे खूबसूरत फूल, और फिर ब्राइट रंग अच्छे होने चाहिए, उसका बड़ा शौक है। और आप में, आप लोगों की भी मुख्तलिफ, लोगों की मुख्तलिफ पसंद होगी। तो असल में ज्यादा से ज्यादा कसरत हासिल करना, नंबर दो, कसरत के हुसूल में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश, दरानी जिठानी से बढ़कर, जिठानी दरानी से बढ़कर, भाभी नंद से बढ़कर, नंद भाभी से बढ़कर, ठीक है, दूसरे से ज्यादा होना चाहिए, दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। जेवर है, चांदी है, कपड़े हैं, बर्तन है, घर है, जो कुछ भी है, दूसरे से ज्यादा। तीसरी चीज क्या है कि एक दूसरे के मुकाबले में फखर जताएं कि इन्हें दूसरे से ज्यादा कसरत हासिल है और अच्छा हासिल है। अच्छा, आपका भी है वैसे ये कपड़ा, पर ये मेरा कपड़ा फाइन है ना, इसके क्या कहने, आपने भी ये ब्रीजा पहना है, लेकिन ये जो ब्रीजा है ना, कैसी इसकी चमक, ये बिल्कुल नया नया आया है। जब मैंने बहुत ब्रीजे का नाम सुना, तो कुछ मेरी आदत भी है कि मैं सोचती हूँ, क्योंकि जब मैं हर एक की जबान पर ब्रीजा ब्रीजा सुनने लगी, मेरी तबीयत घबराने लगी, तो मैं हर एक से फिर पूछने लगी, मैंने कहा ये ब्रीजा होता क्या है, मैंने कहा ये नाम क्यों रखा, किसने रखा, कैसे रखा, नहीं, फिर वो जो सबसे पहले स्टूडेंट उधर पाकिस्तान है, वो मैडम के नाम, तो ऐसे कोई बात नहीं, मैडम ये बस ऐसे चिकन ही होती है, फिर मैंने कहा आप चिकन क्यों नहीं कहते, फिर ब्रीजा क्यों कहते हैं, तो यानी कोई बात का जवाब नहीं था, बस ये कि वो एक ये ब्रांड है, एक नेम है। तो कभी ब्रीजे की बात होती है, कभी व्हाइट गोल्ड की बात होती है, कभी किसी भी चीज की, लेकिन मसला क्या है कि हम ऐसी गुल अहमद की लॉन पहनना चाहते हैं, या जो भी जो बेस्ट से बेस्ट है वो पहनना चाहते हैं, जो डिजाइन किसी ने देखा ना हो, जो दूसरों के पास ना हो, नजम वो पढ़ना चाहती हूँ जो किसी ने सुनी ना हो, फैशन तरीका, दुल्हन जो कपड़ा पहनेगी या वो मेकअप या कुछ भी, लोग क्या कहते हैं, एक ही बात, फखर जताना ना, कि ताकि कहा जा सके कि ऐसा डिजाइन, ऐसी चीज किसी ने पहले नहीं की, वो किया है ना। जैसे अभी जो है वो एक बहन के यहाँ फंक्शन हुआ, तो बता रही थी तफसील के पूरा बकरा जो है वो रोस्ट किया गया, पूरा बकरा रोस्ट किया गया, मैंने कहा अच्छा। तो फिर बता रही थी कि वो जायरा के बहुत धूम मची पूरी फैमिलीज में, बहुत रिश्तेदार जमा थे, कि इतनी अच्छी दावत है कि पूरा बकरा जो था वो रोस्ट किया हुआ था। तो बहरहाल ये इंसान की फितरत है कि बात दावत की हो, कपड़े की हो, जेवर की हो, घर की हो, किसी भी चीज की, हम ये चाहते हैं कि अनोखा, अछूता, फिर जिसमें हम फखर कर सकें। तकासुर के अंदर ये तीन चीजें पाई जाती हैं, नंबर एक ज्यादा से ज्यादा हासिल करना, नंबर दो दूसरे से ज्यादा, और नंबर तीन फिर उससे फखर जताना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो सूरत नाजिल हुई ये असल में अरब अरब के जो लोग थे, अरब के जो कबाइल थे, वो आपस में मुकाबला बाजी किया करते थे। और इसमें भी उन्होंने जो है एक इनका वाकया लिखा है कि बनी अब्दे मनाफ बिन कुसा और बनी सहम बिन अमर। अच्छा, अब आप इतना भी लिख सकते हैं, बनी अब्दे मनाफ और बनी सहम, सीन हामिम, इनमें जो है वो दुनियादारी वाला तफाखुर चलता रहता था। कबायली सिस्टम था ना वहां पे, तो कबीले आपस में एक दूसरे पर फख्र करते थे। एक दिन आपस में ये लोग अपने अपने अफराद की तादाद पे मुकाबला करने लगे कि देखो किन के सरदारों और अशराफ की तादाद ज्यादा है। और हर फरीक ने अपनी अपनी कसरत का दावा किया। जब शुमार किया तो बनू अब्दे मनाफ तादाद में ज्यादा निकले। बनू सहम ने कहा हमारे मुर्दों को भी शामिल करो, वो भी हम ही में से थे। अब इसके बाद कब्रिस्तान में ये चले गए, अब कब्रों को गिनना शुरू किया। तो तीन घरों की आबादी के मुताबिक, जैसे बकदर तीन घर, जो तीन घरों की जो आबादी होती है ना, इतनी तादाद में बनू सहम के अफराद जो थे वो आगे बढ़ गए। फिर इस पर अल्लाह ताला ने अल्हाकुमुत तकासुर जो है उसको नाजिल कर दिया। और बाज लोग कहते हैं कि अंसार के कबीले थे बनू हारिसा और बनू हारिस के, इनमें जो है वो तफाखुर हुआ था, तकासुर हुआ था, तफाखुर आपस में जो है वो मुकाबला करना। अब आप देखिए कि इस सिलसिले में कि इंसान जो है, इंसान की एक जो मर्ज है उसका अल्लाह ताला यहाँ पे निशानदेही कर रहे हैं कि तुम आपस में जो है वो कसरत की तलब में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हो। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रें देख ली। और ये जो जुरतुम है इसका रूट है जोर, जे वो रा, और इसके मानी होते हैं देखना। वैसे तो देखने के लिए आपने कई लफ्ज पढ़े हैं, जैसे आप देखें कि पांच लफ्ज कुरान में आए हैं देखने के लिए, जिनमें रा, नजारा, बसारा, आनसा और फिर जारा, ये पांचवा दर्जा है। इसके मानी होते हैं किसी की मुलाकात करने जाना, किसी चीज को देखना और उससे मिलने आना, जियारत भी इसी से है। आप कहती है ना उसकी जियारत की। और ये लफ्ज है जे वो रा, सीने का बलाई हिस्सा। जुर्तु फुलानन, मैंने अपना सीना उसके सामने किया या इसके सीने का कसद किया, यानी वहां मुलाकात की। तो हत्ता के तुम्हारा ये सीना जो कि फखर करता था, दौलत को जमा करता था और हसब नसब तादाद जहानत हुसन दौलत पर तफाखुर किया करता था, तकासुर पे खुश होता था, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रें देख ली। मकाबिर इसका वाहिद कब्र है और कब्र के लिए ये आम लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और मकाबिर जो है, हाँ, मकबरा तुन भी है लेकिन कब्र भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका रूट है काफ बारा। और ये लफ्ज जो है वो आम लफ्ज है कि यहां तक कि तुमने कब्रें देख ली। इसके मानी ये हैं कि तुम दुनिया की मोहब्बत में और दुनिया की दौलत जमा करने में इतने मसरूफ हो कि तुम्हें याद ही ना रहा कि तुम्हें मरना है, यहां तक कि फिर तुम्हारी मौत आ गई, क्योंकि मौत के साथ ही जो है वो क्या शुरू हो जाता है, फिर इसके साथ ही फिर कब्र की जिंदगी शुरू हो जाती है। और हमें एक रवायत मिलती है तिर्मिजी की, हजरत अली रजी अल्लाह का कौल है कि हम अजाबे कब्र के बारे में शक में पड़े रहे यहां तक कि अल्लाह को मुतकासुर नाजिल हो गई। तो जैसे कब्र की जिंदगी जो है वो भी जो है वो आखरत के मराहिल में है, और कुरान में कई जगह हमें इसका जो है वो जिक्र मिलता है, जैसे कब्र का जो अजाब है सूरत अल अनाम आयत 93, सूरत अल नहल आयत 28, सूरत अल मोमिनून 9900 और अल मोमिन 45-46, तो हमें और जगह से भी पता चलता है। इमाम बुखारी ने एक रवायत की है जो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है क्या, कि अगर आदम के बेटे के पास दो वादियां भरकर माल हो तो वो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा। इब्ने आदम का पेट मट्टी के सिवा कोई चीज से भर नहीं सकता। اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان جو ہے حل میں مزید اور چاہیے اور چاہیے، دنیا سے اتنی محبت کرتا ہے، یہاں تک کیا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مر جاتا ہے نا. اور کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تب بھی ہرس سے اس کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں، وہ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جب تک کہ کوئی ان آنکھوں کو بند نہیں کر دیتا. تو ان آنکھوں کو کیا چیز بند کرتی ہے؟ آگ، قبر کی مٹی. قبر کی مٹی پھر ان آنکھوں کو جو ہے وہ بند کر دیتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں انقریب تمہیں پتا چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم الیقین، یقینی علم سے کیا چیز جانتے، لترون الجحیم، ضرور تم دیکھو گے جہیم کو. اب آپ دیکھیے کہ پہلی دنیا کی زندگی ہماری کیسی ہے، آیت نمبر ایک بتاتی ہے. پھر اس کے بعد مرنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے، حتی زرتم المقابر، پھر قبر کی زندگی ہے. اور آیت نمبر 3, 4, 5, 6 اور 7 ایک ہی بات اس میں کہی گئی ہے، ایک ہی بات کہی گئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ موت آ کر رہے گی اور پھر جو ہے وہ مختلف موت کے مراحل میں سے تمہیں گزرنا پڑے گا اور حساب کتاب جو ہے وہ ہو کر رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، تو ساری بات کا پھر نچوڑ کیا ہے کہ دنیا کی محبت میں تم اتنے مصروف رہتے ہو کہ مرتے دم تک دنیا کی محبت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو نہ کینسر کی بیماری سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں. جیسے کینسر کے مریض کو پتہ نہیں چلتا، اندر ہی اندر وہ پورا پھیل جاتا ہے نا. اور پھر اب تو جو ہے آئے دن ایسی خبریں سنتے ہیں اور تکلیف بھی اس کی، اور پھر یہ کہ کیسا جو ہے وہ موذی مرض. تو دنیا کی محبت بھی کینسر کی بیماری کی طرح ہے، اندر ہی اندر جکڑا ہوا ہے جسم کے اعضاء کو بھی اور پورے اعصاب کو اور پورے جو ہمارا جسم، دل، دماغ، کہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسی میں گزر جاتا ہے. اور حتیٰ کہ پھر انسان جو ہے وہ موت کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا انسان، تو اس کی جو ہرس ہے اور ہوس جو ہے نا اس میں کمی نہیں ہوتی. حتی زرتم المقابر، اب کلا کا لفظ عربی زبان میں ڈانٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا مانیے؟ خوب سمجھ لو، جان لو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی یہ تمہارا مال کو جمع کرنا اور مال کی کثرت پر مقابلہ کرنا اور اس پر فخر جتانا یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، ہرگز نہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے بچے ہیں، بیٹھے ہیں، پڑھائی نہیں کر رہے، تیاری نہیں کر رہے، اور والدین چلتے پھرتے کہیں کہ ہرگز نہیں، یہ کچھ فائدہ نہیں دے گا کمپیوٹر پہ بیٹھنا اور ٹی وی پہ بیٹھنا، جلدی پتا چل جائے گا. یہ وہی انداز ہے، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، جلدی تمہیں پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں جلدی تمہیں پتا چل جائے گا. اب سیکنڈ ٹائم پہ کیوں آیا کہ جلدی تمہیں پتا چل جائے گا؟ اس لیے کہ کوئی چیز بہت اہم ہو تو اس کی تاکید کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے پھر الفاظ کی تکرار تو ہوا کرتی ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے اور آپ نے کیا فرمایا، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئے اور وہ یہ سورت پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تُو نے صدقہ کر دیا اور جاری کیا، یا کھا لیا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا. تو ابن آدم کیا کہتا ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال. تو انسان کا مال کون سا ہے؟ جو وہ استعمال کر لیتا ہے، جو کھا کر ختم کر دیتا ہے، اور یا پھر یہ کہ दूसरों को सदका दे देता है, बाकी तो सारा किसका माल है? उसके वारिसों का माल है, उसका माल थोड़ी है, बाकी सारा माल जो है वो अपने वारिसों के लिए जो है वो छोड़कर आ जाएगा। फिर आप देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जो थे वो चटाई पर लेटे हुए थे और आपके जिस्म पर चटाई के निशान पड़े हुए थे, आपके पास पानी का एक मशकीजा और चंद खजूरें थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह नो आए और आकर रोने लगे कि कैसरो किसरा के बादशाह दुनिया के मजे लूटे और दो जहां का बादशाह इस हाल में। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए उमर क्या तुम इस पर राजी नहीं कि इनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए जो है वो आखिरत हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि फौरन दुनिया की बजाय हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की तवज्जो जो थी वो आखिरत की तरफ मबजूल कर दी। और ये वाकया तो बड़ा ही खूबसूरत है, मेरा ये दिल चाहता है कि आप भी सुने, मैं भी सुनूं और हम अपने ईमान को जिंदा करें और ताजा करें और अपने ईमान को मजबूत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शाम से रेशमी कपड़ा आया, ऐसा कपड़ा इससे पहले कभी देखा ना था। अब सहाबा कराम का क्या हाल हुआ कि उठ उठ कर हाथ में पकड़ पकड़ कर उस रेशमी कपड़े को देखने लगे। जब आपने अपने सहाबा को देखा कि सहाबा इस कपड़े को इस तरह देख रहे हैं तो आपने फरमाया, अरे क्या इस कपड़े को देखकर तुम्हें ताज्जुब हो रहा है, क्या ये कपड़ा तुम्हें पसंद आया है? फिर आपने कहा, अरे 7 दिन मास को अल्लाह ने जन्नत में जो रुमाल अता किए हैं वो इस कपड़े से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, जब तुम्हारे नीचे कालीन होंगे। और आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम, जिनके एहसानात को हम चुका नहीं सकते, जो दाईए आजम, जो मोहसिन इंसानियत, जो रहमतुल्लिल आलमीन, सारी जिंदगी हमारे गम में भूले गए। एक ही गम था इंसान हदायत पा जाए। लोग ओजड़ी डालते रहे, वो उन पर मुश्क और अंबर छिड़कते रहे। लोग धक्के देते रहे और वो कहते थे कि हो सकता है ये नहीं तो इनकी नस्लें ही ईमान ले आए। और अब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को देख रहे हैं कि कपड़ा बड़ा पसंद आया है। और आप देखिए सहाबा कौन थे, इंसान ही थे ना, कोई चीज दुनिया, दुनिया की रौनक, हुसन, रंगीनी, रानाई, जेबाई, ये सब चीजें दिल को बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगले ही लम्हे तवज्जो आखिरत की तरफ मफजूल करवा दी। कह रहे 7 दिन मास को जो रुमाल मिले हैं जन्नत में वो इस कपड़े से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन 7 दिन मास रजी अल्लाह नो की वफात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है क्या हुआ था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जनाजे में शिरकत की, इनकी नमाज जनाजा जब पढ़ाई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको कब्र में उतारा और आपके साथ सहाबा भी थे, और कब्र में उतार कर जब मिट्टी को बराबर कर दिया तो आपने जोर जोर से कहना शुरू किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा ने भी कहना शुरू किया, फिर कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सहाबा ने भी कहना शुरू किया। फिर सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि कब्र इन पर तंग कर दी गई थी। आपने कहा कि कब्र इन पर तंग कर दी गई थी। और आपको पता है कि जब इनकी वफात हुई थी तो रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था, एहतज़ा अशुर रहमानी ली मौते 7 दिन मुआज, 7 दिन मुआज की मौत पर रहमान का अर्श हिल गया। और इनकी नाश, इनकी जब मैयत उठाई हुई थी ना, बहुत हल्की इनकी मैयत थी, और कहा कि इनके जनाजे जो, इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठा रखा है। जब इनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से खुशबू आ रही थी। ये बद्री साहबी थे, 70,000 फरिश्तों ने इनके जनाजे को उठा रखा था, इनकी मैयत को, और इनके जनाजे में शिरकत की थी। आसमान के वो दरवाजे खोल दिए गए जो पहले कभी नहीं खोले थे जब फरिश्ते उतरे। और लेकिन इनकी वफात पर रहमान का अर्श लर्ज उठा, जो अंसार के सदीके अकबर कहलाए, और इसके बावजूद जो है आपने कहा कि कब्र जो है इनके लिए थोड़ी देर के लिए तंग हो गई थी। फिर आपने अल्लाह अकबर जब सुबहानअल्लाह कहा तो फिर वो कैफियत जो थी वो ठीक हो गई ना। तो आप सोचें, मैं तो यही हदीस सोचकर सुनकर सोच रही थी कि एक तरफ आपका ये कहना कि इनको जो रुमाल मिले हैं वो इससे कहीं खूबसूरत हैं, दूसरी तरफ जो है वो कब्र में से खुशबू का आना, 70,000 फरिश्तों का शिरकत करना, और ये कहना कि इनकी डेथ पर रहमान का अर्श हिल गया। बदरी साहबी और जो मकाम इनका मदीना के अंसार में था ना, वो सदीक अकबर का था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का मक्का के सहाबा में था, इतना इनका मकाम था। लेकिन फिर भी आपने ये अल्फाज भी बताए ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारे दिल जो दुनिया की मोहब्बत से भरे पड़े हैं, हमारे दिल जो दुनिया के अंदर जो है वो डूबे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया की मिसाल पानी जैसी है, कैसे कि दुनिया की मिसाल पानी जैसी है, और पानी जो है उसके हैं मैं और आप मुसाफिर, और सफर करना है कश्ती पर। अच्छा, अब आप देखें कि पानी मुफीद है जब कश्ती के इर्द गिर्द रहे। हमारा दिल है कश्ती, कश्ती के इर्द गिर्द है पानी, तो पानी मुफीद है। अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो फिर कश्ती वाले डूब जाएंगे, फिर कश्ती डूब जाएगी अगर अंदर घुस गया। तो यही हाल है दुनिया का, दुनिया इर्द गिर्द रहे तो ठीक है कि इसका इस्तेमाल करें और इसमें रहते हुए आखिरत की तैयारी करें। रहना नहीं है, रहना नहीं है, यहाँ बस कुछ घड़ियां गुजार के मुसाफिर की तरह अल्लाह के पास जाना है, वहां असल में रहना है, वहां जीना है, यहाँ तो बस जिंदगी के दिन गुजारने हैं। तो जो है वो दुनिया की मोहब्बत को दिल के अंदर घर नहीं करना करने देना, क्योंकि ये मताउल गुरूर है। ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं करनी कि इतनी मोहब्बत कि बस दुनिया के लिए जो है ना वो रोते रहे और इसकी फिक्र करते रहे। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी खूबसूरत बात है, उनसे एक दफा किसी ने पूछा कि आपने सुकून और राहत कैसे हासिल की। उन्होंने कहा कि जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा मालदारों के साथ गुजारा, क्योंकि खुद बड़े अमीर थे ना, बहुत अमीर थे। कहा जब तक उनके साथ रहा अमीरों के, मुझसे ज्यादा गमगीन कोई नहीं था। उनका घर, उनकी सवारी, उनके कपड़े, जब देखता तो सोचता कि इनका घर मेरे घर से अच्छा है, इनकी सवारी मेरे घर मेरी सवारी से अच्छी है, इनका लिबास मेरे लिबास से अच्छा है, और मैं कुर्ता रहता। कहते हैं कि फिर दुनियावी हैसियत से जो कम माल वाले थे, इनकी मैंने सोबत जब इख्तियार की, फर्स्ट तरह तू, फिर मैंने राहत पा ली, राहत में आ गया। जिसको भी मैं देखता तो मालूम होता मैं बड़ा खुशहाल हूं, मेरा खाना अच्छा, मेरी सवारी अच्छी, मेरे कपड़े इनसे अच्छे। तो एक बात याद रखें कि सुकून मालो दौलत से नहीं मिलता, कितनी भी दुनिया हासिल कर लेंगे इसका कोई एंड नहीं है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। तो सुकून किससे मिलता है? ईमान से। सुकून किससे मिलता है? आखिरत की तैयारी से। और सुकून किससे मिलता है? दुनिया में रहें लेकिन आखिरत के लिए जिएं, दुनिया में रहते हुए हम आखिरत की तैयारी करें, और एक ही फिक्र हो और एक ही तमन्ना हो और एक ही हम काम करें, और वो क्या कि अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह का शुक्र करें। यहां पे भी यही बात कही गई है कि कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये जो तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो, ये दुनिया ना मौत के वक्त काम आएगी, ना कब्र में काम आएगी, कब्र के अंधेरों में और तन्हाइयों में, और ना ही आखिरत में काम आएगी। फिर होगा क्या? अब आप देखें आयत 4 में एक दफा डांटा गया कि नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया की मालो दौलत, औलाद, ये सोने चांदी के ढेर, ये जात पात हसब नसब का फखर किसी काम नहीं आया। फिर दोबारा डांट है, कल्ला लौ तालमूना, काश के तुम जानते, हरगिज नहीं काश के तुम जानते, इल्म अल यकीन, यकीनी इल्म से। इसके क्या मानी है कि यकीनी इल्म से जानते? क्या जानते? लतरबुन्नल जहीम, तुम जरूर दोजख को देख कर रहोगे। अब आप देखें कि जहीम क्या है? जहीम दोजख का एक नाम है, दोजख के कई नाम है जो कुरान में आए हैं, जैसे 5, अन्नार, जहन्नुम, जहीम, सकर और सईर। जहीम जीम हा मीम से है, इसके मानी होते हैं शेर का घूरना, तेज निगाहों से देखना, और जहम का है आग का तेज भड़कना भी, तो जहीन तेज भड़कने वाली आग को भी कहते हैं। तो जब वो भड़कती है और जहन्नुम जब घूरती है, जैसे कि शेर जो है वो घूरता है, तो गड़े में सख्त दहकती हुई आग को जहीम कहा जाता है। खुजू फातिलू इला सवा इल जहीम, इसे पकड़ लो और रगीते हुए खींचते खींचते जहन्नुम के बीचों बीच डाल दो, तुम जरूर जहन्नुम देखकर रहोगे, तुम फिर लतरवुन्नहा, तुम जरूर बजरूर उसे देखोगे। कैसे? आइनल यकीन, आंखों से, आंखों के यकीन से। अब आप देखें कि आयत नंबर 4 में तालमून, मुफस्सरीन कहते हैं ये इल्म का पहला दर्जा है। आयत 4 में तालमून इल्म का पहला दर्जा है, आयत 5 में इल्मल यकीन इल्म का दूसरा दर्जा है, और आयत 7 में आइनल यकीन ये इल्म का तीसरा दर्जा है। और इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूं, जैसे पानी है दरिया का ना, अब दरिया का पानी है, कहते हैं कि दरिया है दरिया है, समझ नहीं आती बात की। अब क्या हुआ कि दरिया को आंखों से देखा, अपनी आंखों से समंदर को देखा, ठाठे मार रहा है, उसके अंदर तुगयानी है, तो ये क्या है? ये पहला दर्जा है। अब क्या हुआ, दूसरा दर्जा क्या है? पहला दर्जा क्या है? तालमून का। अब दूसरा दर्जा क्या है? इल्म अल यकीन। अब इसमें क्या किया कि किनारे पर पहुंचे और चुल्लू भर पानी ले लिया। अब क्या किया, हाथ में पानी लेकर देखा कि अच्छा ये होता है समंदर का पानी, ऐसा होता है पानी, अब पानी हाथ में ले लिया, ये है इल्मुल यकीन। अब तीसरा दर्जा क्या है? आइनुल यकीन, कि वो पानी जो था अब दरिया के अंदर घुस गए, उसने गोता लगाया और पानी खुद भी उसके अंदर चले गए, पानी भी अंदर अपने चला गया, अंदर अपने पानी चला गया, हम खुद पानी के अंदर चले गए। समझ आई बात की? अंदर आइनुल यकीन। इसकी मैं आपको अब समझ आई इसकी कि इल्म के तीन दर्जे हैं। तो पहला दर्जा है कि जस्ट हम सुन रहे हैं, अब दूसरा क्या है कि सुनने के साथ याद भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अमल नहीं कर रहे। तीसरा दर्जा क्या है कि अब उसने खुद उसको उसका लिबास पहन लिया, खुद उस पर अमल करना शुरू कर दिया, हमारे दिल के अंदर दिमाग अमल बातें हर चीज में वो चला गया। एक और मिसाल आपको देती हूँ, मसलन आपसे कोई कहता है कि आग गर्म होती है ना, आप नहीं मानती, ऐसे जैसे कि बच्चे से कोई कहे कि इस्त्री गर्म है, ये चाय का कप जो मैं पी रही हूं गर्म है, ठीक है? अब बड़ों को सबको ये समझ है क्योंकि वो तो तीनों दर्जे इल्म के हासिल कर चुके हैं ना। अब छोटा सा बच्चा, ये मेरा अपना बेटा मुआज छोटा सा था, मैं बहरीन में थी और गरम गरम चाय थी और चाय उसको रखी और बस ये आया, और जैसे आप पहले भी डराते हैं करते हैं, ये पास ही था, बस एकदम इसका हाथ लगा और चाय गरम गरम इसके हाथों पे गिर गई ना। और उसके बाद ये क्या करता था कि दूर से देख कर ना, तो अब मुंह एक बनाता था और शक्ल बनाता था कि ऊ ये मतलब ये खतरनाक चीज है ना, इसके पास नहीं जाना। क्यों? पहले इसको समझ नहीं आती थी लेकिन आयनुल यकीन की कैफियत हो गई। इसी तरह स्त्री गर्म है, स्त्री गर्म है, लेकिन क्या है कि जब स्त्री लग जाती है, हाथ जल जाता है, कपड़ा जल जाता है, तो ऐनुल यकीन की कैफियत हासिल हो जाती है। पहले क्या आपने सुना, फिर क्या हुआ कि आप जो है उसको गर्म कर रही हैं, आप देख रही हैं कपड़ा गर्म हो रहा है, ये इल्मुल यकीन है। लेकिन ऐनुल यकीन की कैफियत क्या है, कपड़ा जल जाए या फिर हाथ जल जाए तो अंदाजा होता है। आप ओवन ऑन करती हैं, खाना पकाती हैं, अब क्या है कि पता है कि वो जलाती है खाना, मतलब आग है और गर्म है और जलाता है, लेकिन अब कभी इधर उधर से जो भी जहां जहां उसकी वो बने हुए हैं, कभी हाथ जलते हैं, अब क्या है ग्लव्स भी पहनने लगे, फिर क्या करते हैं संभलते हैं बचते हैं, अंदाजा ख्याल रखते हैं ना। तो ये है शिद्दत का एहसास दिलाया जा रहा है कि अभी तुमने ये सब चीजें गैब में है, हिसाब किताब जहन्नुम तुम्हें समझ ही नहीं आती, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया की मोहब्बत का अंजाम क्या है, मौत के वक्त ही पता चल जाता है मौत। वन्नाजियाती नजा, वन्नाजियाती गर्का, वन्नाशिताती नश्ता, उसी वक्त पता चल जाता है। तो ये जो आयतें हैं आयत नंबर 3 से लेकर आयत नंबर 7 तक, इसमें जो बातें हमारे सामने रखी गई हैं वो क्या हैं कि आखिरत की जिंदगी बड़ी ही सख्त है, بڑی ہی شدید ہے، اور اس وقت جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، اور ایسے ہوگا کہ انسان جو ہے پھر کچھ بھی جو ہے وہ کمی نہ کر سکے گا، کچھ بہانہ نہ کر سکے گا، پھر اس وقت انسان جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ اس آپ یہاں پہ اگر آپ جمع کریں ان آیتوں میں تو تعلمون کتنی دفعہ آیا ہے، علم کا لفظ کتنی دفعہ آیا، آپ اس کو نوٹ کریں. آیت 3 میں ایک دفعہ آیا ہے، آیت 4 میں ایک دفعہ آیا ہے، آیت 5 میں 2 دفعہ ہے تعلمون بھی، پھر علم ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ہے علم ایک تو ہے نا کہ علم کیا مطلب ہوتا ہے، جاننا ماننا اقرار کرنا. اب آپ دیکھیں پھر دوسرا لفظ جو یہاں پہ ہمیں استعمال میں مل رہا ہے، علم کے درجوں میں کیا ہوتا ہے، ترونا. علم کیسے حاصل کرتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے، دل سے، دماغ سے، مختلف ہمارے جو سینسز ہیں ان کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. اب یہاں پہ آنکھوں کا ذکر بھی ہے، ایک دفعہ آیا ہے لترونا، اور یہ تاکید ہے، لام لام تاکید اور نون بھی نون تاکید، ضرور بس ضرور دیکھ کر رہو گے. اور آیت نمبر 7 میں بھی عین، آنکھ، آنکھوں کے ساتھ تم دیکھ کر رہو گے، کس کو، جہنم کو. اچھا یہاں ایک میرے اور آپ کے نام ایک سوال ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم آنکھوں سے جہنم کو دیکھ کر رہو گے. اصل میں جب ایمان پکا اور مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور جب انسان دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تو پھر لگتا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے اس کے حیولے ہیں، دور کی بات ہے، جو کر رہے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک حقیقت ہے نا. لیکن صحابہ میں اور صحابیات کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں یہی فرق ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ علم الیقین اور عین الیقین کی کیفیت نہیں ہے. ہمارے پاس جو کیفیت ہے صرف اتنی کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ وہ ہونا ہے. اگر علم الیقین اور عین الیقین کی کیفیت ہو پھر کیا ہے کہ پھر ہم اس کی تیاری کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حنظلہ کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، حنظلہ تو منافق ہو گیا، اور حضرت ابوبکر ان کو تسلی نہیں دیتے، خود بھی رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بھی یہی کیفیت ہے. وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی محفل میں عجیب حال ہوتا ہے، اب تو لگتا ہے دنیا ادھار ہو گیا ہے نا. دونوں رونے لگتے ہیں، دونوں رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو منافق ہو گئے نا. آپ دیکھ لیں پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہے، اور کس طرح دنیا کے اندر ہیں. اور ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے پیچھے ہم کتنا بھی بھاگے، دنیا ہمیں مل نہیں سکتی. کیوں مل نہیں سکتی؟ اس لیے کہ دنیا دار الفنا ہے، دار القرار نہیں ہے. الدنیا مزرۃ الآخرہ، کسی بزرگ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال پرندے اور اس کے سائے کسی ہے، کہ تم بھاگتے ہو سائے کے پیچھے، اور یہ ہے دنیا، سایہ کبھی پکڑا نہیں جاتا، اور آخرت ہے پرندہ. تم پرندے کو اگر پکڑو گے نا، سایہ تمہارے قدموں کے نیچے آئے گا. اور یہ ایک آزمائی ہوئی بات ہے، آپ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر لیں. آپ دیکھیں ہوائیں اور فضائیں بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا آپ سے بھاگتی ہے، دنیا ہمیں جو ہے وہ پھر ملتی نہیں ہے نا. اور خواہش ہر ایک پوری ہوئی اس کے بعد کیا، دنیا اگرچہ مل بھی گئی اس کے بعد کیا، صحرا کو بادلوں نے سمندر بنا دیا، شولوں کی پیاس بجھ بھی گئی اس کے بعد کیا. عمر عزیز جبکہ فنا کے سفر میں ہے، مٹی میری گلاب ہوئی اس کے بعد کیا. اس کا ہی غم نہیں، غم دنیا بھی ہے مجھے، مانا نجات اس سے ملی اس کے بعد کیا. پیشانی بہار پہ تحریر ہے خزاں، پھولوں سے شاخ شاخ سجی اس کے بعد کیا. تو ہم سب کو دنیا میں چونکہ ہمیشہ نہیں رہنا، اس کی فکر کرنے کی بجائے یہ فکر کرنی چاہیے کہ جتنی دیر رہنا ہے اس میں میں اور آپ آخرت کی تیاری کیا کریں، میرا اور آپ کا مقصد زندگی کیا ہے. اور آج سے ہم یہ اصول لے لیتے ہیں جو پہلے بھی کئی دفعہ لیا ہے، کیا کہ اب آپس میں دنیا کے لحاظ سے زیادہ کثرت کی فکر نہیں کرنی. میرے اتنی انگوٹھیاں ہیں، ایک میری اسٹوڈنٹ تھی اس کو انگوٹھیاں پہننے کا بہت شوق، ایک انگلی میں چار چار پانچ پانچ، کہتی مجھے بہت پسند ہے نا انگوٹھیاں پہننا. تو ہمیشہ تو نہیں پہنیں گے نا، تو اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا نا. तो क्या करना है, हमें दुनिया की बजाय आखिरत की तैयारी करनी है। अब इसका ये नहीं मतलब दुनिया को छोड़ देना है, बल्कि क्या कि दुनिया एग्जामिनेशन हॉल है, इसका बेहतरीन वक्त का इस्तेमाल करें, इसको जाया ना होने दें और ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, गुनाहों से और सोबते गुनाहों से दूर रहें और बद सोबत से दूर रहें और सोबते सवाले इख्तियार करें। और अगली आयत जो पूरी सूरत का निचोड़ है, और वो क्या है, एक तरफ तकासुर की बात है, दूसरी तरफ मुहासले की बात है। क्या फरमाया, तुम लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन्नईम, फिर अलबत्ता जरूर ब जरूर तुमसे पूछा जाएगा, यौमइज़िन उस दिन किसके बारे में पूछा जाएगा, नेमतों के बारे में, ये इतनी दौलत, ये इतने कपड़े, ये इतना जेवर, घर, बर्तन। और मेरा तो दिल इस बात पे इतना घबराता है, करता है कि इतनी चीजें होती हैं घर के अंदर, पता ही नहीं होता कि मेरे पास ये चीजें भी हैं। लिपस्टिक को ले लें, जेवर को ले लें, कपड़े, बेडशीट, बर्तन, ग्रोसरी ला ला कर रखते रहते हैं, डेट्स गुजर जाती है, अंदाजा नहीं होता कि मेरे पास इतनी पड़ी हुई, और रोते रहते हैं कि है ही कुछ नहीं, संदूक है तो भरे हुए। तो कहा कि फिर इन सारी जो नेमते हैं, इन नेमतों के बारे में तुमसे जरूर बा जरूर पूछा जाएगा। तो सुम्मा फिर क्या मतलब है, जब दुनिया खत्म हो जाएगी, जब मौत आ जाएगी, फिर क्या होगा, जब आखिरत के मराहिल आएंगे तो होगा फिर हिसाब किताब का वक्त, फिर पूछा जाएगा। तो अहले ईमान से भी नीमतों का हिसाब होगा और काफिरों से भी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे से नीमतों के बारे में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो यूं है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हमने तेरे जिस्म को तंदुरुस्त नहीं किया था, क्या हमने तुझे ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था, ये तिर्मिजी की रवायत है। फिर इसी तरह हजरत अंस रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम को कयामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा गोया के वो भेड़ का बच्चा है, जिल्लत की हालत में, और उसे अल्लाह ताला के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह उसे पूछेगा, क्या मैंने तुझे नेमतें नहीं दी थी, तुझ पर इनाम नहीं किया था, सो तूने क्या किया, वो कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने माल जमा किया और खूब बढ़ाया और इससे ज्यादा छोड़कर आया जो पहले था, सो मुझे आप वापस लौटा दीजिए, मैं सारा माल आपके पास ले आता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू मुझे वो दिखा जो तूने पहले भेजा था। इब्ने आदम फिर वही बात कहेगा कि मैंने माल जमा किया, खूब बढ़ाया और इससे खूब ज्यादा छोड़कर आया जितना पहले था, आप मुझे वापस लौटा दीजिए, सारा माल लेकर अब आपके पास आ जाता हूँ। नतीजा फिर ये होगा कि इस शख्स ने जरा सी खैर भी आगे ना भेजी होगी, लिहाजा उसे दोजख की आग की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। तिर्मिजी की ये रवायत है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की नेमतों का खुद शुक्र अदा किया करते थे, और बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि आप अपने सहाबा को नेमतों का शुक्राना अदा करने पर मतवज्जो करते। एक मरतबा आप अबू बकर और उमर रजी अल्लाह को साथ लेकर एक अंसारी सहाबी के घर चले गए, उन्होंने खजूरों का खोशा पेश किया जिनमें तीनों किस्म की खजूरें थी, तर्क खजूरें, खुश्क और कच्ची पक्की, जैसे दरमियानी सी। साहिबे खाना अंसारी ने एक बकरी भी जिबा की, कितने वो खुश होंगे ना, आपने और आपके साथियों ने खजूरें खाई और खाना खाया, पानी पिया, अब खूब सैर हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक और उमरे फारूक रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा, उनसे फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कयामत के दिन इस नेमत के बारे में तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा कि नेमत का क्या हक अदा किया और उसे जो कुव्वत हासिल हुई उसको किस काम में लगाया, शुक्र अदा किया या नहीं, तुमको भूख ने घरों से निकाला, अभी तुम वापस नहीं लौटे कि अल्लाह ताला ने ये नेमत तुम्हें अता कर दी। इसे इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। और एक और आपका वाकया पता चलता है कि आप इन्हीं के साथ अबू बकर और हजरत उमर, आपने एक मौके पर कहा था ये मेरे जमीनी वजीर हैं, जैसे एक जिब्राइल है, मिकाइल है, तो ये मेरे जमीनी। अब इनके साथ आप एक अंसारी बाग, अंसारी के बाग में गए, उन्होंने खजूरों का एक खोशा पेश किया, आपने और आपके साथियों ने इसमें से खाया, फिर आपने ठंडा पानी मांगा, पानी पीकर आपने फरमाया, कयामत के दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा ये ठंडा साया, ये ठंडा पानी और ये फिर खजूरें, ये नेमत। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने खजूरों का खोशा हाथ में लेकर जमीन पर मारा, खजूरें बिखर गईं। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कयामत के दिन हमसे इनके बारे में सवाल होगा? अब उनका अंदाज देखें, आपने फरमाया हाँ हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा सवाए तीन चीजों के। नंबर एक, इतना छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसे आदमी अपनी शर्मगाह की जगह को लपेट ले। नंबर दो, रोटी का टुकड़ा जिससे अपनी भूख को दफा करें। नंबर तीन, इतना छोटा सा घर जिसमें गर्मी और सर्दी से बचने के लिए बतकल्लुफ दाखिल हो सके। अब मुझे आप बताएं कि मैं और आप जो हैं फिर हम क्या करेंगे ना, इतनी नेमतें इतनी नेमतें, और इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हमारा हाल क्या है, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ्फार। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं वइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतें हैं इतनी नेमतें हैं कि फिर तुम इसका शुक्रिया जो है वो अदा नहीं कर सकते। एक दफा एक फकीर था ना, किसी के पास गया, रोना रोया कि बड़ा गरीब हूं। तो अगला शख्स बड़ा अक्लमंद था, उसने कहा कि अगर तुम मुझे अपना एक हाथ काट कर दे दो तो इसके बदले जो है मैं तुम्हें क्या दूंगा, 1,00,000 दिरहम देने को तैयार हूं। कहने लगा कि नहीं नहीं। तो उसने कहा चलो दायां ना दो बायां दे दो। उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर इसी तरह उसने जो है वो दायां पांव बायां पांव और हर एक की कीमत 1,00,000 लगाई। उसने सब पे इनकार किया। फिर उसने कहा कि कैसे हो तुम कैसे मुफलिस और गरीब हो, तुम तो लखपति हो, तुम तो एक अपने जिस्म का हिस्सा जो है 1,00,000 में देने को तैयार नहीं हुए। और आप देखें आप केला खाती हैं, कितना अच्छा लगता है केला, कितना खूबसूरत उस पर कवर होता है, छिलका उतार कर फेंक देते हैं और अंदर से केला खा लेते हैं, तो क्या अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? ठंडा पानी पीते हैं, वालदैन नेमत है, जिंदगी नेमत है, औलाद नेमत है, घर गाड़ी सारी चीजें नेमत है। गर्मी लग रही हो ना तो एहसास होता है कि एसी किसे कहते हैं, पंखा ना हो तो एहसास होता है कि पंखा कितनी बड़ी नेमत है। तो बहरहाल ये एक आयत जो है हम सबको क्या पैगाम देती है कि दुनिया में जो कुछ भी है ये इम्तहान के पेपर हैं, सारी नेमतें इम्तहान के पेपर हैं और इन पेपरों के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में हमसे सवाल होगा। और ये वही बात है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के पास जब भुना हुआ गोश्त लाया गया तो आप रोने लगे और कहने लगे कि कहीं हमें जो है हमारी नेकियों का बदला दुनिया ही में तो नहीं दिया गया, रोजे से थे सारा दिन रोजा रखा और भुनावा गोश्त देकर रोने लगे और कहने लगे हजरत मुसब और हजरत हमजा और इस तरह के लोगों का नाम लेके कि वो हमसे अच्छे थे, वो शहीद हो गए और हम अभी तक दुनिया के मजे लूट रहे हैं ना, वो गजवाए उहद में शहीद हो चुके थे ना। तो आप सोच लें कि मेरा और आपका हाल क्या है। तो क्या करना चाहिए, नेमतों के मामले में दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए और आखिरत के मामले में अपने से जो है वो ऊंचे लोगों को देखना चाहिए जो आखिरत की तैयारी में हमसे ज्यादा अच्छे हैं, और अपना मुहासबा करना चाहिए हम सबको कि हम जो है वो कहाँ खड़े हैं क्या कर रहे हैं इससे पहले कि हम मरे और कब्र में जाएं और हमसे हमारा हिसाब किताब हो। हमें हम सबको जो है वो अपनी फिक्र करनी चाहिए और अपने अमलों को ठीक करना चाहिए।
दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए। इस बात को ना भूलो सबका यही हशर है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। ये आलीशान बंगले वहाँ काम के नहीं है, मखमल में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, दो गज जमी का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के मुसाफिर, आंखों से तूने अपनी देखे कई जनाजे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है, दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, दो दिन का ये सफर है।
तो सूरत तकासुर हमें दुनिया की बजाय आखिरत की मोहब्बत की तरफ जो है वो गामजन करती है, गफलत की जिंदगी पर पानी के छींटे डालती है, मकसदे जिंदगी अता करती है, नींद के मातों को जगाती है। और एक ही लगन, एक ही फिकर, एक ही धुन, एक ही तड़प हम सब के अंदर होनी चाहिए, और वो ये कि मेरी और आपकी आखिरत कैसी होगी, और ऐसे अमल करें, कुछ ऐसा कर जाएं कि हम सबका रब हमसे राजी हो जाए और वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और इसके लिए फिर जी और जान की बाजी लगानी पड़ेगी, ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी होगी, फिर जागना होगा, फिर भागना होगा, इससे पहले कि वो सख्त वक्त हम पे आ जाए और फिर हम कुछ भी ना कर सकें। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك